તારીખ 21-8-1994 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 491 પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 458
ચંદ્રવચનામૃત પત્રાંક 491 તીર્થંકર વારંવાર નીચે કયો છે તે ઉપદેશ કરતા હતા. સૂર્યજ્ઞાન જે સૂત્ર છે એમાં 7મા અધ્યાયનું 11મું સૂત્ર છે. હે જીવો, તમે બુજો, સમ્યક પ્રકારે બુજો. બુજો એટલે આત્મકલ્યાણ. હે જીવો, તમે તમારા આત્મકલ્યાણ કરી લ્યો, સમ્યક પ્રકારે આત્મકલ્યાણ કરી લ્યો, એમ તીર્થંકર કહેતા હતા. મનુષ્યપણું મળવું ઘણું દુર્લભ છે. મનુષ્યપણું ખાલી પેટ ભરવા માટે નથી કે પંચેન્દ્રિયના વિષયો માટે મનુષ્યપણું નથી. મનુષ્યપણું આત્મકલ્યાણ માટે મુખ્ય પડે છે. મનુષ્યપણું મળવું ઘણું દુર્લભ છે અને ચારે ગતિને વિશે ભય છે એમ જાણો, નહીંતર ઘણું દુઃખ ભોગવવું પડશે એમ જાણી લ્યો. ભય છે એનો અર્થ શું છે કે જો આત્મકલ્યાણ નહીં થાય તો દુઃખનો પાર નથી. અને એ પ્રસિદ્ધ છે, નજરે દેખાય એવી વાત છે કે જીવો કેટલા દુઃખી થઈ રહ્યા છે. કાંઈ નહીં તો 12માં સંયોગની અનુકૂળતા હોય એને પણ પરિવારના સભ્યો સાથે પ્રકૃતિનો મેળ ખાવો મુશ્કેલ છે આજે, અને એને લઈને દુઃખ થતું હોય છે પાર વગર, કેમ કે બેનો સ્વભાવનો મેળ ખાય નહીં અને એનું દુઃખ રિયાજ કરે. અવલોકન હોય તો ખ્યાલ આવે બરાબર, જેટલું બારીક અવલોકન હોય એટલો ખ્યાલ આવે. ચારે ગતિને વિશે ભય છે એમ જાણો, અજ્ઞાનથી સદવિવેક પામવો દુર્લભ છે એમ સમજો. સદવિવેક એટલે આત્મકલ્યાણ કરી લેવું છે એવો વિવેક અજ્ઞાન દશામાં બહુ ભાગ આવતો નથી. અથવા કયા પરિણામમાં મારું આત્મકલ્યાણ થઈ રહ્યું છે, કયા પરિણામથી અકલ્યાણ થઈ રહ્યું છે એવો વિવેક અજ્ઞાન દશામાં આવતો નથી. અજ્ઞાનથી સદવિવેક પામવો દુર્લભ છે, પછી કોઈને વિવેક આવે છે આત્મકલ્યાણનો અજ્ઞાન દશામાં, મુમુક્ષુ દશામાં, તો ત્યારથી એને સુવિચારણા ગણવામાં આવે છે. આ જીવની વિચારણા છે એ સારી છે. તો જો પ્રગટે સુવિચારણા તો પ્રગટે નિજ જ્ઞાન, તો એ આત્મજ્ઞાનનું કારણ થાય એવી વિચારણા. પણ એક આત્મકલ્યાણ કરી લેવું છે આ ભાવમાં, કોઈ પણ ભોગે કરી લેવું છે, એટલી તૈયારી થાય તો પોતાની ભાવનાની, આત્મકલ્યાણની ભાવનાની એટલી તૈયારી થાય તો એ સુવિચારણા છે. અને એ સુવિચારણામાં આગળ વધીને જીવ આત્મકલ્યાણ કરે છે. ગુજરાતીમાં નહીં સમજાય, આતા હે સમજમાં નહીં આતા હે, નહીં આયેગા.
હાં
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 હિન્દી મેં લે. પૂરા લોક એકાંત દુઃખ સે જલતે હૈ, જૈસે અગ્નિ મેં જલન હોતી હૈ, અગ્નિ લગ જાય તો જૈસે જલન હોતી હૈ, વૈસે પૂરા લોક, પૂરા સંસાર, સંસાર કે સભી પ્રાણી એકાંત પૂરે કે કઈ કિસી કો સુખ નહીં હૈ, એકાંત દુઃખ સે જલતે હૈ એસા જાનો. और सर्व जीव अपने अपने कर्म से, कर्म के कारण से विपर्यास, कर्म के लिहाज विपर्यासपना अनुभव करते हैं, उसका विचार करो। और सर्व जीव अपने अपने कर्म से पुरुष मति विपर्यास हो गया है, मति भी सीधी नहीं चलती, आत्मकल्याण करने में मति नहीं चलती है, अकल्याण हुए ऐसी मति काम करने लगती है, वो मति विपर्यास है, उसका अनुभव करता है, इसका विचार करो। ऐसा स्विग्नांग सूत्र का बात लिया है। मतलब बहुभाग ऐसा हो रहा है, सर्व जीव मैंने बहुभाग जीवों को ऐसा हो रहा है कि वो मति विपर्यास के कारण अपना ही अहित करता है। जैसे कि अपन संसार में दो पैसा कमा लेते हैं, आता है पूर्व प्रारब्ध के कारण से, लेकिन मान लेते हैं कि हमारी अकल होशियारी से हमने दो पैसे कमा लिए। अब क्या करेंगे कि उसका खर्च वगैरह जो होता है तो उसमें खुशी होती है, देखो हम पैसा कमाए भी और उसका खर्च भी ऐसे इस तरह करते हैं अनेक प्रकार से सांसारिक कार्यों में। अब दोनों में जीव को तो अकल्याण ही होता है, नुकसान ही होता है, और बहुत राजी खुशी होता है, खूब राजी खुशी हो जाता है, राजता है जिसको कहते हैं, वे हम सुखी हो गए और सुख से हमारा दिन निकल रहे हैं, और उसके फल में पूरा दुखी होने वाला है। तो ये मति विपर्यास है क्या, कि कारण तो अपना दुख का सेवन कर रहा है और उसमें खुशी भी मना रहा है, तो उसमें वो मति विपर्यास के अलावा क्या है उसमें, ऐसे बुद्धि उल्टी काम करती है। उसका विचार करो, विचार करो मैंने उसमें कल्याण कहाँ है, अकल्याण कहाँ है, कितना है कल्याण, कितना अकल्याण, कितना, इसका विचार करो। अब सत्संग के विषय में द्वादशांगी के सरंग सूत्र में जो बात आई है वो कह रहे हैं, वो भी तीर्थंकर ऐसा कहते थे कि सर्व दुख से मुक्त होने का अभिप्राय जिसका हुआ हो कि मुझे बिल्कुल दुख नहीं चाहिए, हमेशा के लिए पूरा सुख मुझे चाहिए, और ऐसा अभिप्राय वास्तव में जिसका हुआ हो, ऐसा तो अभिप्राय तो सबका सुखी होने का है, लेकिन वो अपना कल्पित सुख में सुखी होने की बात है। अब तो आकुलता छोड़ने की बात हो कि एक अंश भी आकुलता हमें नहीं चाहिए, पूरी निराकुलता हमें इसके लिए चाहिए, ऐसा अभिप्राय जिसका हुआ हो वह पुरुष को आत्मा को खोजना, गवेषणा मैंने आत्मा की खोज करना कि मेरा मूल स्वरूप कैसा है, उसने अपना असल स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, मूल स्वरूप को खोजना कि मेरा स्वरूप क्या है, जैसा भी मनुष्य हूँ वैसा ही मेरा स्वरूप स्वरूप है कि कोई और मेरा स्वरूप है, मूल स्वरूप क्या है। और आत्मा की खोज हो उसने, उसको जिसको आत्मा की खोज करना है उसको यम नियम आदि सर्व साधन का आग्रह अप्रधान करके, मैंने गौण करके, उसको यम नियम व्रत में नहीं चढ़ जाना, इसकी मुख्यता नहीं करना। देखो किस प्रकार का उपदेश है, संप्रदाय में जाओगे तो यम नियम करो, व्रत लो, ऐसा करो वैसा करो,
लेकिन मूल बात तीर्थम कर गया है, जो बेल चल किया वो दूसरी बात है, ये मूल बात तो कुछ है। जैसे हमारे हमारे विद्वान है गुरुदेव पास से जो जिसने बोध लिया, वो नबे रुपया नमाड़ेगा तो गुरुदेव जो कही वो ही कहेगा, दो पांच अपने घर के कहेगा। तो मूल बात तो ठीक है, वो तो ज्ञानी के घर की है, गुरु के घर की है। ऐसे कुछ मूल बातें तो मूल घर की है, तीर्थंकर देव की है उसमें। हाँ, इनके शास्त्र में वो बात है कि यम नियम को गौण करो, अगर आपको सुखी होना है तो यम नियम को गौण करो। हमको वो नहीं खाना ना, वो नहीं करना ना, ऐसा छोड़ देना ना, त्याग कर देना ना, व्रत पचकान ले लेना, उसको गौण करो। क्यों नहीं, तो फिर क्या करना है वो कहेंगे ना। तो जिसको आत्मा की खोज करना हो उसे यम नियम आदि सर्व साधन का आग्रह को अप्रधान करके, मैंने गौण करके सत्संग को गवेषणा, सत्संग से सत्संग के विषय में आत्मकल्याण के विषय की गहराई में जाना, उसका नाम गवेषणा है, गहराई में चले जाना। तो यम नियम को गौण करके सत्संग को मुख्य करना, ये बात कही। यम नियम साधन नहीं है मुमुक्षु की भूमिका का, मुमुक्षु की भूमिका का साधन सत्संग है। शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग तो दोनों सत्संग ही है। ये शास्त्र स्वाध्याय हम करते हैं, ये भी एक प्रकार का सत्संग है। ज्यादा आदमी इकट्ठा करके इकट्ठा होकर के करते हैं, वो थोड़ा करते हैं तो कुछ उसमें ढंग बदलता है। तो जब कम होते हैं तो अपने व्यक्तिगत बात भी बोल सकते हैं, और ज्यादा समय में वो बात नहीं बोल सकते हैं, उतना फर्क पड़ता है, फर्क तो उतना पड़ता है। और कोई ऐसा भी सरल होता है कि कोई भी कितना भी हो अपने भी व्यक्तिगत बात कर सकता भी है, उनको ये नहीं है कि मेरे इज्जत कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, तो वो भी कर सकता है, इज्जत की दरकार होगी तो वो नहीं करेगा। तो सत्संग तो जिस ढंग से करना चाहे हम करना चाहे उस ढंग से होता है, जिस प्रकार से हम सत्संग करना चाहे उस प्रकार से सत्संग होता है। सत्संग को गवेषणा यानी उसकी उपासना करना, उपासना करना, सेवन करना, सत्संग के प्रति लगाव ज्यादा रखना, मुख्य करना उसको, दूसरी सब बातें गौण करना। सत्संग की उपासना जिसको करनी हो उसे संसार को उपासने का आत्मभाव छोड़ देना, त्याग देना। अब तुमको त्याग करना है, सर्वथा त्यागना, त्याग करना है ना। एक दो दो चार चीज के क्यों त्याग करता है तुम? पूरा संसार की उपासना ही नहीं करना है क्या? संसार में से आत्मभाव का त्याग करो ना। संसार कौन सा है? जहां अपनत्व होता है वहां संसार है। अपना संसार कितना? कि जिसके साथ अपना आत्मभाव एकत्व भाव होता है उतना अपना संसार, वो सर्वथा त्याग कर देना। वो चीज नहीं खाना, वो चीज नहीं लेना, वो नहीं करना, वो गड़बड़ छोड़ दो। आत्मभाव को छोड़ो ना, जहां आत्मभाव होता है उसको छोड़ दो ना। बस जो भी उदय है उस उदय में आत्मभाव होता हो रहा है वो सर्वथा छोड़ना है। किसको? जिसको सत्संग की उपासना करनी हो उसको। वरना क्या होगा कि एक बाजू हम सत्संग की उपासना करेंगे घंटा दो घंटा तीन घंटा, फिर संसार की उपासना करेंगे। तो सत्संग की उपासना है वो धुलाई हो जाएगी, पूरी की पूरी
धुलाई हो जाएगी,
साफ हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी चीज। हाँ, उपासना में ना संसार की उपासना करते हैं, देख लो ना, शब्दार्थ नहीं करना है, परिणाम का अर्थ देख लो। अब क्या हो रहा है, संसार की उपासना हो रही है, संसार में अपने को मिठास आती है, जहाँ अपनत्व है वहाँ अच्छा लगता है, वो उसको सर्वथा त्याग करना है। और सत्संग अति प्रिय लगे, सत्संग कैसा लगे, अति प्रिय लगे, और संसार में रस नहीं आवे, ये बात हो जानी चाहिए कि कहीं भी संसार में रस
नहीं आवे,
रस नहीं आएगा, और रस नहीं आएगा तो प्रवृत्ति कम हो जाएगी, बोलने की, मिलने की, जुलने की, बोलने की, सब प्रवृत्ति कम हो जाएगी। दूसरे को लगेगा भी ऐसा कि आजकल पहले जितने वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट ऐसा भी देंगे कि आजकल कोई गड़बड़ दिखती है, ठीक है जैसा भी दिखे, हमको हमारा अकल्याण करना नहीं है। लोग कुछ भी कहे, हमको तो हमारा आत्म कल्याण करना है, अकल्याण नहीं करना है, बस सीधी बात होती है। उसमें हमें लोक दृष्टि छोड़नी है, लोक संगना छोड़ देनी है। बहुत अच्छा मार्गदर्शन है इधर सत्संग के लिए कि जिसको सत्संग की उपासना करनी हो वास्तविकता से, उसको संसार के उपासने का आत्मभाव सर्वथा त्याग देना है। संसार में आत्मभाव भी रखना है, रस भी रखना है, मीठा भी रखना है, वालभ भी रखना है, मिठास भी रखना है, और सत्संग भी साथ साथ उपासना है, ये बात होने वाली नहीं है। नहीं, पहला तो यू है कि संसार में रहीने संसार में आत्मभाव त्यागवानो छे, पची छोड़वानी वात छे, कि पहला छोड़े तो रस रही जाए अने त्यां जईने हांभरे पाछो बधु शुं थाय। अने संसारनी उपस्थितिमां संसारनो रस छोड्यो होय ત્યારે એને પોતાને પુરુષાર્થ જે કરવો પડે એનો એને ખ્યાલ આવે કે આમાં પુરુષાર્થ કેટલો કરવાનો છે, શું બાકી તો ઘણા એવી પરિસ્થિતિમાં ત્યાં દીક્ષા લીએ છે, ચાલો ભાઈ કઈ રોટલાનું ઠેકાણું નથી, શું અથવા સંસારમાં બધા આપણા વિરુદ્ધ થઈ ગયા છે, એ તો દુઃખ ગર્ભિત, મોહ ગર્ભિત, માન ગર્ભિત, તો ગડબડ થાય છે, એનો કઈ અર્થ નથી, સામે ચીજ છે અને એ ચીજ પ્રત્યેનો મોહ નથી, આમ હોવું જોઈએ, શું મોહનો વિષય સામે છે અને મોહ ન થાય, એટલી પોતાના પરિણામની કેળવણી કરી હોય, આત્માની કેળવણી કરી હોય, પછી બાહ્ય ત્યાગ કામનો છે, અથવા બાહ્ય ત્યાગ આને અર્થે કરવાનો છે, નહીંતર ગડબડ થાય, અને એ નજરે જોવામાં આવે છે ત્યાગીઓની સ્થિતિ કેવી છે, નજરે જોવામાં આવે છે, અને અત્યારે તો બધું વકરી ગયું છે, कहा सत्संग की उपासना करनी हो उसे संसार के उपासने का आत्मभाव सर्वथा त्यागना, कितना स्पष्ट लिखा है, संसार को त्यागना ऐसा नहीं लिखा है, संसार की उपासना का जो आत्मभाव है उसको त्यागना है, भाव की बात लिया है, भाव में तो तैयारी करो पहले, भाव में तैयारी किए बिना बाह्य त्याग किस काम का? कोई काम का नहीं है। अपना सर्वाभिप्राय का त्याग करके अपनी सर्वशक्ति से यह सत्संग की आज्ञा को उपासना, सत्संग में जो भी आत्मकल्याण के लिए आज्ञा है, चाहे वो सत्पुरुष के नाम से आज्ञा हो, चाहे आचार्य देव के नाम से आज्ञा हो, चाहे जिनेंद्र देव से आज्ञा हो, अभिप्राय सबों का एक है। जो सत्पुरुष की आज्ञा है वही जिनेंद्र देव की आज्ञा है, वही निर्ग्रंथ गुरु की आचार्य महाराज की आज्ञा है। तो अपना सर्व अभिप्राय को छोड़ करके, क्या आज्ञा भी उपास है और अपना अभिप्राय भी साथ में रखे, तो ये स्वच्छंद का त्याग हुआ नहीं। अपना सर्व अभिप्राय का त्याग करना, मैंने पूरा स्वच्छंद छोड़ देना है, हमको आज्ञा में चलना है, आज्ञा के बाहर हमें जाना नहीं है। दृढ़ निश्चय सुभाग भाई का वो बात थी, ज्ञानी के मार्ग में चलने का उसका दृढ़ निश्चय था। वो तिर गए एक ही कारण से तिर गए, बाकी बहुत गड़बड़ थी उनको, ईश्वरकर्ता को मानते थे वो। तो ये हरि का पत्र क्यों आया है हरि के नाम से, वो मानते थे ऐसा ईश्वर कुछ करता है। फिर भी उन्होंने एक निर्णय कर लिया था कि हमारा स्वच्छंद छोड़ करके हमें ज्ञानी के मार्ग में ज्ञानी की आज्ञा से चलना है, और तो उसमें तिर गए। बस एक बात बराबर पकड़ करके रखे तो सब दोष से बच गए और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करके गए हैं यहाँ से।
ईश्वरकर्ता की मान्यता होने के बावजूद भी सतपुरुष का पहचान कर लिया और सतपुरुष की आज्ञा पे चलने का निर्णय कर लिया।
हाँ, दो बात कर लिया। कैसी परिस्थिति में हुआ होगा, थोड़ा गहराई से उसका अभ्यास करना चाहिए। एक और तो वो ईश्वरकर्ता को मानते थे, दूसरी और वो खोजते थे कोई सतपुरुष को, उसकी खोज थी, उसके पिताजी की भी खोज थी। वो मर गए तो कहते गए कि किसको खोजना, तुम ये जो मेरे पास पर्चा है कोई सत्पुरुष है वो ही उसको बात इस बात को समझेगा समझाएगा, अगर कोई इस बात को खोलता है तो समझ लेना कि वो सत्पुरुष है। तो उनकी खोज में थे, उनकी धुन थी वो बात पर, तो वो बात तो ढीली हो गई दूसरी साइड के, उसमें मिल गए, मिल गए तो उसमें बिल्कुल चिपक गए उसके साथ है। सब बात ढीली हो गई, फिर तो क्या है कि वो जो समझाए वो समझना है, वो कहना है वो मान्य करना है, हमारे कुछ रखना नहीं है। बस ये अभिप्राय में उसकी जो मान्यता थी वो तो ढीली हो गई, शिथिल हो गई, तो उसमें निकलने में देर लगी नहीं। हाँ, तीव्र मिथ्यात्व का भी नाश हो सकता है, मन मिथ्यात्व का तो नाश हो ही हो गए, तीव्र मिथ्यात्व का नाश हो गया उसका। तो क्या कहते हैं, अपना सर्व अभिप्राय का त्याग करके अपनी पूरी शक्ति से, सर्व शक्ति से मैंने पूरी शक्ति से सब ताकत वहां लगाना एक जगह, इस सत्संग की आज्ञा को उपासना, आज्ञा के उपासना में सर्वशक्ति का प्रयोग करना और कुछ गड़बड़ करना नहीं। तीर्थंकर ऐसा कहते हैं कि जो कोई यह आज्ञा उपासता है वह अवश्य सत्संग को उपासता है, जो ये आज्ञा को उपासता है वो सत्संग मैंने सत्पुरुष की उपासना करता है, और जो सत्संग को इस प्रकार से उपासता है वह अवश्य अपने आत्मा की उपासना करता है। देखो निमित्त से उपादान पर चले गए, जो आज्ञा को उपासता है उस सत्संग को मैंने सतपुरुष को आज्ञा देने वाले को उपासना करते हैं, और जो इस तरह से सत्संग को उपासता है वो अपने आत्मस्वरूप की उपासना कर रहा है, अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहा है ना, इसलिए वो आत्मा की उपासना कर रहा है। बाहर में ऐसा दिखे एक दिखाव है, एक पहलू ऐसा है कि वो सतपुरुष और सत्संग की उपासना करता है, अंदर में वही पहलू अपने आत्मस्वरूप के कल्याण के लिए वो उपासना करता है। इसलिए अकेला निमित्त प्रधान बात मान लेना नहीं है, वो अवश्य आत्मा को उपासता है। दूसरे में अवश्य एक सत्संग में लिया, जो आज्ञा को उपासता है वो अवश्य सत्संग को उपासता है। सत्संग में बुद्धनों ले लेना, सतपुरुष का संग भी लेना और सतपुरुष भी लेना, पर ऐसे जो सत्संग को उपासता है वो अवश्य आत्मा को उपासता है, वो निमित्त को उपासता है, मुख्यतया गौणतया आत्मा को उपासता है, वो बात भी नहीं है। और आत्मा को उपासने वाला सर्व दुख से मुक्त होता है, और जो आत्मा की उपासना करता है वो सर्व दुख से मुक्त हो जाता है। उनको जो इसका अभिप्राय था सर्व दुख से मुक्त होने का, उसकी सिद्धि हो जाएगी, सर्वार्थ सिद्धि हो जाएगी। जो ऊपर का जो सूत्र है ना अध्ययन सात, उसकी मूल गाथा वो नीचे जो दिया है वो है, संबुज्जा जंतवो मानुषत्तम दुःखं भयं बालिशीर्णम आलम्भो एगंत दुखे झरिएव लोये सकमणा विपर्याय सुवे। ये मूल गाथा वो है सुयोगदांग ने, सूत्रकृतांग सुयोगदांग भी कहते हैं उसको, सूत्रकृतांग भी कहते हैं। अब कहते हैं कि सर्व प्रकार की उपाधि आदि व्याधि थी, व्याधि से मुक्तपणे वर्तते होने पर भी सत्संग के विषय में रही हुई भक्ति वह हमको मिटनी दुर्लभ मालूम पड़ती है। क्या है कि हमको कोई आदिवादी उपाधि है उसका कोई बंधन नहीं है, आदि व्याधि उपाधि जो आती है उसका हमको कोई बंधन नहीं है, उसमें तो हम मुक्तपणे वर्तते हैं, हमको कोई असर नहीं पहुंचती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई प्रशंसा करता है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई निंदा करता है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कोई प्रतिकूलता खड़ी हो जाती है, रोग आ जाता है, हमको कोई नहीं फर्क पड़ता है, कोई भी बाह्य परिस्थिति में हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो इससे मुक्त वर्तते हैं। फिर भी ऐसा होने पर भी एक प्रसंग ऐसा है जो सत्संग है उसमें हमारी भक्ति है, सत्संग के प्रति हमारी भक्ति है। देखो क्या लिखा है,
इससे मुक्त नहीं,
इससे मुक्त नहीं है, और सब प्रसंग से मुक्त है, सत्संग से मुक्त नहीं है। वहां हम बंधे हुए हैं, किस प्रकार से हमारा बंधन है कि भक्ति पूर्वक हमारा बंधन है। सत्संग की वो भक्ति करते थे ठीक, सर्व प्रसंग से मुक्त होने पर भी सत्संग में हमारा भक्ति पूर्वक का बंधन है, वो बंधन मिटना हमको आसान लगता नहीं है, ये हमारा बहुत लगाव है उस पर। खुद ज्ञानी है, सत्संग को कितना चाहते हैं, मुमुक्ष को कितना होना फिर हाँ सर्व प्रकार की उपाधि आदि व्याधि से मुक्त रूप से वर्तते हैं, ऐसा होने पर भी सत्संग में रही हुई भक्ति वो सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसी बुद्धि मत लगाना वरना वो बुद्धि लगा लेते कि तो निमित्ताधीन बात हो गई। सत्संग का सर्वोत्तम, मैंने सत्संग ही सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम अपूर्वपणा, सत्संग का सर्वोत्तम अपूर्वपणा अहोरात्र एम हमको वशा कर, वशा मैंने वास करता है, करता है हमारे आत्मा में ये अपूर्वपणा वास करता है। सत्संग वो सर्वोत्तम अपूर्व है। देखो दो विशेषण लिया है सत्संग का, एक तो अपूर्वपणो लिया है कि सत्संग है अपूर्व साधन है, और कैसा अपूर्व है कि सर्वोत्तम अपूर्व है। ये बात हमारे आत्मा में वास करती है, निवास करती है, बस गई है, ऐसी परिस्थिति है हमारे को। तथापि उदय जो प्रारंभ से उसका अंतराय वर्तता है, सत्संग में हम रह सकते हैं नहीं है, इसका अंतराय चल रहा है। मुंबई से लिखते हैं ना, बहुत करके किसी बात का खेद हमारा आत्मा के में उत्पन्न नहीं होता। कोई भी बात बन जाती है हमको कुछ असर नहीं होती है, उसका कोई खेद नहीं होता है। कोई भी नुकसान हो गया, कोई भी हो गया, कुछ भी हो गया, हमको कुछ नहीं लगता। तथापि सत्संग का अंतराय का खेद हो रात्र बहुत करके वर्तता है, वर्ता ही रहता है। सत्संग का अंतराय है वो हमको बर्दाश्त होता नहीं है। ज्ञानी को भी सत्संग का अंतराय बर्दाश्त नहीं होता है, उतना सत्संग के प्रति लगाव है। तो आत्मकल्याण कितना जोर से करते होंगे वो बात है। सत्संग को छोड़ करके सर्वभूमि, सर्व मनुष्य, सर्व कार्य, सर्व वाचिद आदि प्रसंग अनजाना जैसा साव बिल्कुल पराया, साव मैंने बिल्कुल पराया, उदासीन जैसा और रमणीय, बिल्कुल उसमें कोई सुंदरता नहीं दिखती, अमोह कर जिसका कोई लगाव नहीं हमको होता, और रस रहित स्वाभाविक पना है, स्वाभाविक रूप से भाषित होता है, लगता है, ये हमारी हालत है। वैसे ना वैसा वर्क में आवे से बधु अमने अजैन लागे, परदेश लागे से आ बधु अजैन लागे से, आ बाबा क्या आवे छे आ बधु परदेश लागे से, आ एवी ज बात करी छे। तो सर्व भूमि, सर्व वाचित, सर्व मनुष्य, सर्व कार्यो, सर्व प्रसंग, बिल्कुल पराया, उदासीन, अरमणीय, अमोकर और बिल्कुल रस रहित, स्वाभाविक तौर से ऐसा भाषित होता है, करना नहीं पड़ता है, ऐसा ही हमको स्वाभाविक हो जाता है, हमको हमारा कहीं उपयोग लगता नहीं है। बातचीत का प्रसंग हो गए तो स्वीच ऑफ हो जाए, क्या क्या बोला क्या सुना कोई पता नहीं है, हाँ करके कर दो पूरा उसको, चलो एक उदय आ गया, रस रहित निपटा दो उसको, कोई रस लेना नहीं, सुना अनसुना कर दिया, बोला अनबोला कर दिया, चाहे उपयोग रहित चक्षु मैं हाँ पागल हो जाता है सत्संग का पागलपन है, दुनियादारी की लाइन में नहीं रहता है, दुनियादारी के लोगों के साथ इतना हिलता मिलता जुलता नहीं है, लगता है क्या हो गया, जो हो गया सो हो गया, चलो मात्र ज्ञानी पुरुष ज्ञानी पुरुष को बहुत बहुवचन दिया है, मुमुक्षु लोग वो भी बहुवचन दिया है, या मार्गानेश्वर पुरुष, इसका सत्संग वो हमको जाना हुआ पहचाना हुआ, उलान जाना था ये जाना हुआ पहचाना हुआ, अपना प्रीतिकर सुंदर आकर्षण करने वाला और रस स्वरूप लगता है, भाषित होता है, ये हमको दिन सुहाता है, इसके सिवा कुछ सुहाता नहीं है। देखो मतलब विशेषण दिशा में प्रतिपक्ष लिए और रमणीय माँ सुंदर लिदो ओम ओ कर्मा आकर्षक करने वाला लिया, रस रहित में रस स्वरूप ले लिया, अनजाने में जानने वाला ले लिया, अपना पराय में अपना लिया और उदासीन में प्रीति कर दिया। ऐसा होने से हमारा मन बहुत करके अप्रतिपत्पण वस्तु वस्तु बसते बसते आप जैसे मार्ग इच्छावान पुरुष के विषय प्रतिबद्धकपणा को प्राप्त करता है। ऐसा होने से हमारा मन बहुत करके अप्रतिबद्धपणा बचता है, सर्व जगह पे सर्व प्रसंग में सर्व उदय में कहीं भी हमको प्रतिबद्धपणा नहीं है, मैंने आत्मभाव कहीं नहीं है, ये मेरा है ऐसा दिखता ही नहीं है, कुटुंब परिवार दुकान धंधा मेरा है ऐसा दिखता नहीं है, उदय को भोग लेते थे जैसे कोई सजा को भोगते हैं, कैदी जैसा सजा को भोगते हैं वैसे उदय को सजा मान करके भोग लिया को, तो कैदी को सजा भोगने में कितने रस आवे, कोई भी कैदी को कैद में डाल दिया और उसके पास काम कराते हैं तो उसमें रस कितना आएगा उसको, ऐसे ज्ञानी को पूर्व प्रारब्ध की सजा भोगने में कितना रस आएगा, कोई रस नहीं आता है। ऐसा हमारा मन है वो तो अप्रतिबद्धपणा का भजन करता है, परंतु आप जैसा मार्गेच्छावान पुरुष, ऐसा कोई मार्ग की प्राप्ति की इच्छा जिसकी हो अंदर से उसके प्रति प्रतिबद्धता प्राप्त करता है वो ठीक है, उनका उनकी सब बात है वो मार्ग की इच्छा के लिए आएगी कि हम कैसे मार्ग की प्राप्ति करें किस तरह से प्राप्त करें, तो उसमें रस आता है हमको, बाकी कहीं रस आता नहीं है। हाँ पर छह कोई लायक जीव छे अम्बालाल भाई ने सुबह भी छे 487 अम्बालाल भाई छे 88 में अम्बालाल भाई छे 489 पर अम्बालाल भाई छे 90 में सुभाग भाई ऊपर में छे મુમુક્ષુ જન્ના પરમ હિતસ્વી મુમુક્ષુ પુરુષ રે સુભાગ, મુમુક્ષુ તો સુભાગ ખરા પણ મુમુક્ષુ જન્ના પરમ હિતસ્વી પણ છો તમે, इसका मतलब ये था कि बहुत मुमुक्षु का हित चाहक थे सुभाग भाई, सुभाग भाई ने अम्बालाल भाई को भी कृपा नदियों को दिखाने वाले सुभाग भाई, और इसी कारण से खंभात के बहुत से मुमुक्षु कृपा नदियों के समीप में आए, उसके मूल में सुभाग भाई बैठे हैं, बहुत से लोग मणि भाई जो मोटाज वाले थे अपने भाई भाई का मामा ननिहाल होता है वो भी सुभाग भाई का, ऐसे बहुत से मुमुक्षु हैं उसको सुभाग भाई निमित्त हुए, क्योंकि सबसे 23वें साल में सबसे पहला परिचय सुभाग भाई को हुआ था, उसके पहले जूठा भाई को हुआ था लेकिन उसका तो देहांत हो गया पहले, बहुत शुरू में ही हो गया, बाकी सुभाग भाई के कारण से आया और सुभाग भाई का जिसने समागम किया, जिन मुमुक्षुओं ने भी सुभाग भाई का समागम किया उसको भी लाभ हुआ है, उतने वो लायक थे, इसलिए लिखा है कि मुमुक्षु जन का परम तस्वीर मुमुक्षु पुरुष से सुभाग, ऐसा करके और जो विशेषण लगाते हैं बहुत सोच समझ करके
जाने।